आज के दिन 4 साल पहले बरसाना में जो हमारा आंखों का चिकित्सालय है उसका उद्घाटन हुआ था, सुबह बताने को भूल गए, अनाउंसमेंट नहीं। 29 मार्च 2007 इस दिन हमारे देश के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल और परम पूज्य रमेश बाबाजी महाराज इनकी उपस्थिति में श्री श्री राधा माधव आश्रम में नेत्र चिकित्सालय का आरंभ हुआ था और उसके बाद में हर महीने वहां पर आंखों का कैंप शुरू हुआ था जो पहले हर साल में हुआ करता था। फिर इस साल से 2007 साल से हर महीने आंखों का कैंप वहां पर शुरू हुआ और हर महीने के कैंप में 400 से 500 लोगों को जांच करते हैं और 70, 80, 90, 100 ऐसे मरीजों का ऑपरेशन भी कर लेते हैं। तो आज इस वक्त वहां पर आंखों का कैंप चल रहा है, एक महीने के आखिरी 2 दिन और अगले महीने के पहले 4 दिन ऐसे वो कैंप होता है। हमारे हॉस्पिटल से बहुत लोग वहां जाते हैं और सेवा करते हैं ब्रजवासियों की। हरे कृष्ण। तो अभी गौर पूर्णिमा का सीजन समाप्त हो चुका है और रामनवमी का सीजन शुरू हो गया है। श्री भगवान प्रभु रामचंद्र जी का अवतार त्रेता युग में हुआ था और उनके परम भक्त हनुमान जी का जन्म भी चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये सुंदर उपलक्ष्य में भक्ति वेदांत अस्पताल में जो पुराने कर्मचारी हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको पता नहीं होगा, हर साल हमारे अस्पताल में रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक हम लोग हरिनाम सप्ताह मनाते हैं, होली नेम वीक। और इस हरिनाम सप्ताह में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से नोटबुक देते हैं सबको और डॉक्टर्स एम्प्लॉयज और उनके एम्प्लॉयज के बच्चे 3 कैटेगरी होते हैं और सब लोग हरिनाम लिखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान का नाम जो है उसको लिखते हैं। और सबसे ज्यादा जिनके नाम होते हैं उनको हनुमान जयंती के दिन हम लोग गिफ्ट देते हैं, पारितोषिक देते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स भी हजारों नाम लिखते हैं, 70,000, 80,000, 7,000 कभी लिखते हैं, 70,000 लिखते हैं, डिपेंड्स ऑन। तो ये बहुत सुंदर है, पुराने जमाने में ऐसा रिवाज था कि भगवान के नाम नोटबुक में लिखकर वो नोटबुक भगवान के मंदिर के जमीन के अंदर लगते थे, उसके ऊपर भगवान का मंदिर खड़ा होता था। क्या भाव था उसके पीछे? ऐसा नहीं कि ईंट की कमी है, सीमेंट की कमी है, ऐसा नहीं। जो घर में प्रेम से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से, भजन पूर्वक भगवान का नाम हम लिखते हैं, केवल सही और नोटबुक का काम नहीं, हृदय का काम। तो वो जो भक्ति का बल है, भक्ति का जो शक्ति है, उसी के आधार पर हमारा मंदिर खड़ा है, ये भावना से और खड़ा होना चाहिए, इसी भावना से उसको लिखते हुए। तो पुणे के मंदिर में वैसा एक हरिनाम मंदिर बना के रखा है, पुणे के इस पर मंदिर में साइड में बना के रखा है हरिनाम मंदिर, वहां पर भी विनती करते हैं कि हमारा जो मंदिर बन रहा है कोंडवा में, वहां पर आपके धन के साथ साथ, ईंट और सीमेंट के साथ साथ आपका भक्ति भाव भी हमको चाहिए इसको बांधने के लिए। इसलिए वहां पर लोग नोटबुक फ्री में देते हैं और वो लिख के उस मंदिर में जमा करते जाते हैं और रेगुलरली वहां जाके वो अभी चल रहा है मंदिर का निर्माण, वहां पर वो जमीन के अंदर डालते रहते हैं। तो ये आध्यात्मिकता है, भावना है, क्योंकि हर चीज में भाव की जरूरत होती है और भाव के बिना भक्ति में क्या है? अगर भाव ही नहीं तो सब कुछ झूठ है, सब कुछ एक दिखावा है, एक ढोंग है, एक नकल है। लेकिन भाव होगा तो तुरंत भगवान के ध्यान को वो आकर्षित कर लेता है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में या जो बोनाफाइड योगी संप्रदाय है भगवान की तरफ पहुंचने वाले, वो देहर्ज वो विनती करते हैं, बहुत तीव्रता से विनती करते हैं कि भक्ति हृदय से करो, हृदय से उनको पुकारो और कोई रीति रिवाज के रूप में, कर्म कांड के रूप में कोई ऐसे करना है, इसलिए पिताजी ने भी किया था, माताजी बोल रही हैं और चाचा भी बोल रहा है, इसलिए आपको करना है, ऐसे करना वो भी अच्छा है, लेकिन वो इतना भगवान को रिझाता नहीं, इतना भगवान को उससे संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त नहीं होता है और उससे उसकी वजह से उतनी कृपा भी जितनी मिलनी चाहिए उतनी कृपा आपको नहीं मिलती है, तो मिलनी चाहिए। जितना हो सके हमको अपने हर एक कार्य में भाव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो जप करने की विधि हो, चाहे मंदिर में सेवा करने की विधि हो, चाहे हॉस्पिटल में आध्यात्मिक हॉस्पिटल है, हाँ यहाँ पर आप कोई नर्सिंग का काम भी कर रहे हो तो भी वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि हॉस्पिटल पैसा कमाने के लिए या ऐसा कोई बिजनेस बनाने के लिए नहीं बनाया है, सेवा करने के लिए बनाया है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनाया है, भगवान का नाम रोशन हो इसलिए बनाया है। तो इसमें भी आप काम कर रहे हो, हृदय से करेंगे, लगन से करेंगे, लोगों का हृदय प्रभावित होता है आप लोगों की भावनाओं को देखकर। हमारे मेहमान लोग आते हैं प्रोग्राम के, मतलब बताते हैं कि आपके स्टाफ के अंदर का जो भाव है बहुत अच्छा है, सबका व्यवहार बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत नम्रता से अदब से पेश होते हैं अपने आप। ये क्यों होता है? क्योंकि भाव जब होता है तो अपने आप वो लोगों के मन को खींच लेता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जेब में आपने गुड़ रखा तो बराबर वो चींटियों को खींच लेता है, मक्खियों को खींच लेता है, बोलना नहीं पड़ता कि यहां पर गुड़ रखा है आ जाओ सब मक्खी लोग, अपने आप आ जाते हैं। उसी तरह से हृदय में अगर भाव हमारे हैं तो भगवान को अपने आप हम खींच लेते हैं। ऐसे अनेकों भक्त हो गए जिनके भाव के वजह से भगवान को तत्क्षण आना पड़ा और आते रहते हैं वहां से। द्रौपदी ने इतने भाव से पुकारा जंगल से, हाँ रुक्मिणी का 56 भोग लेते हुए भी छोड़कर झट से उठे और तत्काल प्रकट हो गए जंगल के बीच में वनवास में, फिर राजसभा में पुकारा तो भी प्रकट हो गए। कितने ऐसे अनंत कहानियां हैं, महाराष्ट्र के संतों की कहानियां हैं, यूपी के संतों की कहानियां हैं, साउथ इंडिया के संतों की कहानियां हैं, अनंत संतों की कहानियां हैं। ऐसे भगवान ने कैसे भावपूर्ण किए हुए पुकार को उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। ये मत समझना कि वो जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते हैं उनकी पुकार सुनते हैं। द्रौपदी राजकन्या थी, राजमाता थी, राजश्री थी, इसलिए उनकी पुकार सुना, ऐसा नहीं। हमारे महाराष्ट्र में तो पुंडरीक है, नामदेव है, एकदम गरीब शिप्पी, ऐसे तो गरीब गरीब लोग थे, भगवान भाग भाग के आए उनको पुकार। एक बार ब्रह्म राक्षस के रूप में आए नामदेव के सामने, नामदेव हंसने लगे, वाह भगवान बढ़िया फॉर्म लिया आपने आज, इतना मजाक क्यों कर रहे हैं। वास्तव में ब्रह्म राक्षस था वो, तो भयंकर भूत के रूप में आए, भगवान नहीं आए भूत आया, लेकिन इतना भाव उनका श्रेष्ठ था कि हर वस्तु में और हर चीज में और हर जीव में और हर भूत में भी वो भगवान को देखते थे। वास्तव ब्रह्म राक्षस थे, लेकिन नामदेव बोल रहे कि भगवान ऐसे आ पा रहे हो, हमारा मजाक कर रहे हो, अपने असली रूप दिखाओ। बहुत देर तक लीला चलती रही, आखिर में ब्रह्म राक्षस के हृदय से भगवान को प्रकट होना पड़ा, ब्रह्म राक्षस नष्ट हो गया और भगवान प्रकट हो गए, उसमें से दर्शन दिए अपने भक्त को, रोक नहीं पाए अपने आप को, अरे वो मुझे ही देख रहा है, कैसे मैं हटूंगा वहां से, मुझे देख रहा है उसके अंदर। ये भक्ति की शक्ति, वो पत्थर से भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, पत्थर हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, जिसकी चेतना भगवान में है उसके लिए भगवान थोड़ी दूर है। जिसकी चेतना भगवान जोड़ के और किसमें है, और दुनिया भर ढूंढे रहेगा तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए हमें सबको भाव के लिए तड़पना चाहिए, भाव की प्राप्ति के लिए तड़पना चाहिए, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनका भाव बहुत श्रेष्ठ है, जो सब जगह पर भगवान की भावना से देखते हैं और भगवान की भावना से कार्य करते रहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। बाकी जो फॉर्म बना के रखा है, नियम पालन का, मंदिर जाना है, डोनेशन देना है, नदी में स्नान करना है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, उसी से हमारा भाव उत्पन्न हो सकता है। भाव उत्पन्न करने के लिए फॉर्मूला दिया है, लेकिन वो फॉर्मूला अगर भाव के बिना है तो फॉर्मूला फॉर्मूला रह जाएगा, वो इधर ही रह जाएगा, कहीं बढ़ेगा नहीं आगे। वो फॉर्मूला अगर नहीं भी होगा लेकिन भाव होगा तो भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन फॉर्मूला होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला के बिना भाव की शुरुआत कैसे होगी, हाउ इट विल स्टार्ट, कहां शुरुआत होगी, उससे कहीं ना कहीं नियम तो पालन करना पड़ेगा ना, तब जाकर भगवान का ध्यान हमारी ओर बढ़ेगा। तो ऐसे ही आज एक ऐसे अनोखे भक्त के आप में कथा बताने वाला हूं, बहुत ही अद्भुत और विचित्र भक्त है भगवान के। एक राजा था जिसका नाम था धृतव्रत, साउथ इंडिया की कहानी है, तिरुवनंतपुर, और उसको उसने नारायण पुत्र प्राप्ति के लिए। तो भगवान नारायण के वरदान के रूप में उसे पुत्र का प्राप्ति हुई, उसका नाम था कुलशेखर। और इतना ये लड़का बचपन से ही भगवान का भक्त था, इतना उसका बुद्धि श्रेष्ठ थी उसकी, भगवान की सेवा में इतनी रुचि थी उसको, वेदों का ज्ञान बहुत सरलता से बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त किया उसने, एक अद्भुत दल था राजा होते हुए भी, और साथ साथ में शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, राजनीति, राजपाट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के अंदर भी तो कुशल बन गया वो, और बहुत कम समय में ऐसा दिव्य अद्भुत बालक था। लेकिन राजपाट में, प्रशासन में, शस्त्र विद्या में निपुण होने के पश्चात भी उसका मन जो है वो पूरा भगवान तक लगा हुआ, भगवान के चरण कमले में उसका मन जो है हमेशा मग्न रहा करता। तो साउथ इंडिया में तीन मेजर राज्य थे, वो तीनों राज्यों का एक राजा था, वो प्रजा की उसके अंदर इतनी श्रद्धा थी कि सब प्रजा उसकी भक्त थी, उसके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहती थी, हमेशा अपने बालक की तरह प्रजा की रक्षा करता था राजा कुलशेखर। इतना प्रजा का सम्मान मिला उसको, प्रजा का आश्रय मिला, मतलब प्रजा का सम्मान, प्रजा की तरफ से सपोर्ट, विश्वास, श्रद्धा, आज्ञा पालन, राज्य की सुभद्रता, आर्थिक सुभद्रता, सब प्रकार की सुविधा, इतना सब होने के बाद भी राजा को लगा कि ये सब सही नहीं है, ये सब दुनिया का चीज है, यहाँ का सम्मान, यहाँ का आदर्श, यहाँ का शस्त्र विद्या, यहाँ का जो अधिकार, सब मुझे यही छोड़ के जाना, भगवान का आश्रय नहीं तो क्या फायदा है। भगवान का इतना बड़ा भक्त होने पर भी उसके मन में ये भावना है कि मैं भगवान की भावना में मेरी कमी है, ये लक्षण है शुद्ध भक्त का, उसको कभी लगता नहीं कि मेरे भगवान की भावना पूरी हो गई, अभी तो मैं शुद्ध भक्त बन गया, ऐसा कभी लगता नहीं। जितना शुद्ध भक्त बनेगा उतना सोचेगा कि मैं इतना पतित हूं, इतना गिरा हुआ हूं, पापी हूं, मुझे अंदर कोई भक्ति का लवलेश नहीं है, ऐसे बोलते रहेगा। जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी शुद्ध भक्त हूं ऐसा मानता नहीं, और जो नहीं होता है वो रोगी होता है, वो बार बार कहेगा मैंने इतने साल भजन किया है, इतना तपस्या किया है, इतना शास्त्र अध्ययन किया है, इतनी एग्जाम पास किया है, इतने सर्टिफिकेट मेरे पास में है, मैं शुद्ध भक्त हूं, और वो अनुयायी को इकट्ठा करने में लगे। लेकिन इतना अधिकार और इतना भजन करने के पश्चात भी, इतना लोगों का सहकार्य, सहयोग, आदर सम्मान होने के पश्चात भी उसको लगता है नहीं होना चाहिए, मैं छोड़ के चला जाऊँ, मुझे श्रीरंगम जाना है, क्योंकि तो भगवान ने स्वयं बताया है श्रीरंगम जो है वैकुंठ है, वैकुंठ स्वयं भूमि पर उतर आया है श्रीरंगम के रूप में, वहां जाऊंगा, संतों के संग में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, और सब ये ऐश्वर्य जो है, ये जो भोग है, सब महल धन संपत्ति सब छोड़ दूंगा, और एक गरीब भिक्षुक बनकर रहूंगा, उनकी सेवा में रहूंगा, उनकी तरफ से सुनूंगा, उपदेश सुनूंगा, उनको पालन करने का प्रयास। लेकिन प्रजा और जो मंत्रिमंडल था ना, मिनिस्ट्री उनकी, वो इनसे इतनी लगाव था उनको कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा राजा जो है बिल्कुल राजपाट छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो राजा तैयारी कर रहे थे जाने की, मंत्रीगण आते हैं, मीटिंग करते हैं, राजा को रोका जाए, तो इतना सुंदर राजकारभार कौन कर सकता है, भगवान की भावना में आदर्श रूप में शास्त्र के अनुसार कौन कर सकता है। और उनको हृदय में आदर के साथ बहुत प्रेम था उनके प्रति, इसलिए वो निर्णय लेते हैं कि राजाओं को, राजा को हम बताएंगे कि श्रीरंगम के जो संत लोग हैं उनको भी यही बुलाएंगे और आपको संग देने की यही व्यवस्था करेंगे। राजा भी मान जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, सेवा भी होती रहेगी, राज भी चलता रहेगा। तो फिर संत लोग आने लगे नियमित रूप से, इनका प्लान था कि सबको बुला देने लगे, इनको कभी वहां जाने का दिल लगना नहीं चाहिए, वहां के लोग रिपीटेडली टर्न बाय टर्न कोई ना कोई आते रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी संत लोग आ रहे हैं तो उनकी सेवा करो, उनका स्वागत करो, उनको भोजन खिलाओ, उनको आश्रम दो, रहने का व्यवस्था करो, उनका सब कुछ क्षेम कुशल देखो, और उनकी तरफ से राज में अखंड हरि पाठ होना चाहिए, भगवान का गुणगान, लीला स्मरण, कीर्तन होना चाहिए। तो फिर और एक समस्या हो गई, कोई राजा के अंदर कोई मीटिंग हो रही है प्रशासन की, तो राजा स्वागत में लगे हुए, संत लोग आ रहे हैं तो मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये आ रहे हैं, ये मात मार रहे हैं, वो मात मार रहे हैं, उनके स्वागत में जा रहे हैं, तो फिर भी कैसे कैसे चला देते। तो राजा के पास में भगवान राम की मूर्ति थी, क्योंकि राम का बड़ा भक्त था, राम का विग्रह था श्री रामचंद्र जी का, तो उनकी पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अभी हम आज से राज दरबार में नित्य रूप से हम रामायण सुनेंगे। तो रामायण सुनोगे? अभी रामायण सुनने में कैसे है, अभी हम लोग सुनते हैं रामायण या हम लोग कहते हैं रामायण, लोग उसकी पढ़ाई करते हैं, उसको याद करते हैं, नोट बनाते हैं, कथा हमें भूलना नहीं चाहिए, पॉइंट पॉइंट भूलना चाहिए, ऐसे वैज्ञानिकली हम लोग तैयारी करते हैं। और सुनने वाले भी आधा सुनते हैं, आधा उनका माइंड घर पर जाता है, फिर वापस आता है, फिर बीच में बोले क्या बोला, फिर कुछ जोक हो गया कथा में, बोले क्या 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 हुआ, प्रभु जी क्या बोले, जोक हो गया तो सुनना है उनको जोक में क्या था। लेकिन जो राधा और कृष्ण की लीला, राम भगवान की लीला चल रही है, उसमें मन जो है यहाँ से माया में, वहां से कथा में, वहां से माया में, वहां से घर में, वहां से आंगन में, वहां से बगीचे में, ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, जब वो संतगण राम कथा का वर्णन हो रहा है तो इनके लिए उनकी आंखों के सामने साक्षात रामायण हो रहा है, वो देख रहे हैं, राम को देख रहे हैं, सीता को देख रहे, लक्ष्मण को देख रहे, भरत को देख रहे, सब रामायण की घटना आंखों के सामने नाट्य के रूप में हो रही है, और वो उनके हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वो पैसिवली बैठे, अच्छा हो रहा है, ताले बजा रहे हैं, ऐसे प्रेक्षकगण नहीं है, वो समरस हो रहे हैं, हाँ लीला में प्रवेश हो रहा है उनका। हम लोग नाटिका क्यों करते हैं, नाटिका ऐसे कर्मणों के लिए नहीं करते, कर्मणों भी होती है उसके अंदर, मनोरंजन भी होता है, लेकिन भगवान के लीला पर नाटिका करने का उद्देश्य यह है कि आम जनता को जो उस समय नहीं थी उनको उस लीला में प्रवेश करने का मौका मिले, वो समरस हो जाए उसके अंदर, भगवान का अस्तित्व का अनुभव करें। इसलिए नाटिका में जब भक्त काम करते हैं तो लोगों को तीन तीन दिन वो कथा सपने में भी आते रहता है, सुबह उठने पर भी याद आता है अरे नाटिका कितनी सुंदर थी। और जब हम रामायण महाभारत देखते हैं प्रोफेशनल लोगों का, तो वो शराब पी के, बीड़ी पी के, दम मार के आके एक्टिंग करते हैं उसके अंदर, बीच बीच सेट के अंदर जाके एक एक पेग मारते हैं। और प्रवचन करने वाले भी कभी कभी उसके अंदर रामायण के सीरियल के अंदर नीचे से एक पेग उठाते हैं, एक पेग मारते हैं, फिर नीचे रखते हैं, फिर ऊपर शूटिंग करते हैं। सब हीरो हीरोइन राम सीता के जो किरदार हो सब लोग ऐसे करते हैं, इसलिए वो कितनी बार देखने के बाद भी हृदय का अनुभव नहीं होता है, कर्मणों होती है, मनोरंजन होता है। लेकिन साल में एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर की तरफ से जो नाट्य महोत्सव होता है, उसके बाद तीन तीन चार चार आठ आठ दिन तक हमारा दिमाग जो है उसी में रहता है, उसी को याद करते रहते हैं, फिर बार बार देखते हैं उसको वीडियो को, तो भी ऐसा रोमांच होता है। हरिदास ठाकुर का रामा अभी भी हम देखते हैं, इतने साल हो गए उसको, आज भी लोग वीडियो देखते रोते हैं, रोमांच होते हैं उनको देखकर, हर प्रकार की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि भक्त लोग उसको हृदय से कहते हैं, हृदय से उसका एक्टिंग करते हैं, उसके अंदर अभिनय करते हैं, दर्शन करते हैं, ताकि लोगों को जितना हो सके उतना प्रत्यक्ष भगवान की लीला का अनुभव हो और लीला में प्रवेश करने का मौका मिले। तो वैसे इनके पास जो कहने वाले थे वे ऐसे भाव से कहने वाले थे, ऐसे कथा बोलते थे वैसे मानो साक्षात घटना सामने हो रही है, और सुनने वाला भी राजा कुलशेखर जैसा था, श्रोता और वक्ता, सुखा और देखने वाला, कान से सुन रहे हैं, उनके मन के आंगन में, मन के पटल में, मन के पर्दे पर पूरा सीन चल रहा है, और जो भावना उस कथा में चल रही है, हाँ कभी करुण भावना है, कभी वात्सल्य है, कभी शौर्य है, कभी वीरता है, कभी युद्ध है, कभी कुछ छीनना है, कभी सीता को हरण कर ले गया है, तो सब कुछ भावना जो है उसका ऊपर नीचे उथल पुथल हो रहा है हृदय में उसके। तो एक बार कथा चल रही थी कि भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास में बैठे हैं, पर्णकुटी में, नासिक में, और वहां से शूर्पणखा आती है और राम को देखकर काम वासना से भर जाती है, और राम को कहते हैं कि तुम ये जो पतली दुबली औरत है इसके पीछे इतना क्यों आ सकते हो, मुझे देखो मेरा शरीर कितना मांस से भरा हुआ है, इतना सुंदर है, इसकी कमर जो है एक लकड़ी के डंडे की तरह है, मेरी कमर जो है नगारे की तरह बड़ी है और सुंदर है, ऐसा अपना वर्णन करने लगती है। तो राम भगवान पहले उसका मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि क्या करें, आप तो बहुत सुंदर हो, कोई उसमें बात नहीं है, लेकिन मैं मेरी पत्नी से आ सकता हूं, मेरी पत्नी में शादीशुदा हूं, आप ऐसे करो, आप लक्ष्मण जी जो है वो अपनी पत्नी को घर रखे आए, वो बेचारे व्याकुल है, विरह में है, हो सकता है आपका प्रेम भावना से उसका दिल अगर आकर्षित हो जाएगा तो फिर वो आपको स्वीकार करेगा, आप जाओ, वो अकेला है, उसको प्रपोज करो। फिर वो जाती है अपना जाल फेंकने के लिए लक्ष्मण जी के सामने, और वैसे ही कहती है बहुत सारी बातें, रोमांटिक बातें। ये रामायण महाभारत है, सब रोमांस, एक्शन, थ्रिल, इमोशन सब है उसके अंदर। हर प्रकार की भावना है, हर प्रकार की भावना उसके अंदर है। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं नहीं देखो ऐसा है, मेरे साथ विवाह करोगी तो भी तुम मेरी पत्नी बनोगी, तो मैं इनका दास हो, तुमको दासी बनना पड़ेगा। तो तुम्हारे हिसाब से जो ये जो पतली दुबली औरत है इनका मैं दास हूं, मेरी पत्नी बनने तुमको इसका भी दासी बनकर रहना पड़ेगा, तो क्या लाभ है? आप जाके उनको ही बनाओ, वो तो राजा है अयोध्या के, वो एक से अनेक पत्नियों के साथ शादी कर सकते हैं, राजा के पास वैसा अधिकार रहता है, आप जाके उनको ही बनाओ। तो दोबारा आती है राम जी के पास, फिर कहती है कि तुम इतनी दुबली और इतनी कमजोर और इतनी नाजुक स्त्री के साथ में क्यों वन में विहार कर रहे हो? मेरे साथ महल में चलो, मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सिद्धियां हैं, बहुत कलाएं हैं, हम लोग इस दंडकारण्य में मेरा ही अधिकार है, पूरा दंडकारण्य मेरा राज्य है, मेरे भाई इसका नियंत्रण करते हैं, ये सब मेरे आनंद के लिए बनाएगा, मैं कहीं स्वच्छंद विहार करती हूँ, अभी मैं आपके साथ में विहार करूंगी, हाथ में हाथ पकड़ के विहार करेंगे। तो फिर राम जी कहते नहीं मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो उससे आ सकती। तो फिर लगता है कि ये जो औरत है इसकी वजह से मेरा और आपका मिलन नहीं हो रहा है, मैं इसी को खा जाती हूँ, फिर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आसक्ति, कोई बाधा नहीं होगी और आपकी आसक्ति भी खत्म हो जाएगी, फिर हमारे तुम्हारे मिलन का मार्ग मुक्त हो जाएगा। इसलिए जब सीता की ओर झपकती है मारने के लिए, तब राम भगवान कहते हैं बस हो गया अभी ड्रामा, अभी एक्शन होना चाहिए, इमोशन बस हो गया, अभी वी वॉन्ट एक्शन, लक्ष्मण इसका इलाज करो। तो लक्ष्मण जैसे ही वो सर्पणखा जो सीता के ऊपर झपकते जाती है, तुरंत अपना तलवार निकाल के एक ही झटके में कुशलता से उसके नाक और कान काट डालते हैं। अभी औरतों को नाक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाक टेढ़ा चपटा गोल बड़ा होने से बहुत फर्क पड़ता है, कौन सा पति मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, वो सब नाक पे ऊपर डिपेंड होता है। और एक नाक का काम होता है कि अरे हमारे नाक काट ली तुमने, मतलब अहम भी होता है। जब अपना अपमान होता है, बेटा एग्जाम में फेल हो जाता है, या बेटा किसी लड़के के साथ भाग जाता है, तो हमारे नाक काट ली लड़के ने, ऐसे हमारे में कहते हैं ना, तो नाक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी नाक को लक्ष्मण जी काट देते और नाक को काटकर गोदावरी के उस तरफ फेंक देते, इसलिए गोदावरी के उस तरफ का हिस्सा जो है वो नासिक कहा गया है, और इस तरफ का भाग जो है पंचवटी कहा गया। नासिक जो है क्षेत्र जो है दंडकारण्य का, गोदावरी बीच में बहती है, तो यहां से नासिका काट के उधर फेंक दिया, उधर नासिका बन गया, इसको नासिक कहते हैं। तो ये देखकर वो चिल्लाती है, चीखती है और रोते रोते चिल्लाते हुए अपमानित होकर वो भाग के जाते हैं अपने भाइयों के पास, खर और दुष्यंत के पास। तो उतने भी श्री रामचंद्र जानते हैं कि अभी हमने राक्षसी को ललकारा है ना, उसको उसके अहम को ठेस लगाया है, तो इसके आगे संकट आएंगे। तो राम भगवान जाकर सीता को लेकर जाते हैं जहां पर कपिला और गोदावरी का संगम है। आप कभी गए नासिक में तो आपको पता होगा, कपिला नदी जो है वहां आके गोदावरी से मिलती है, और उसी मिलन में सीता को लेकर जाते हैं और वहां अग्निदेव प्रकट होते हैं और अग्निदेव को अपनी सीता को अर्पण करते हैं। वो कहते हैं आगे भी संकट आएगा तो आप मुझे एक प्रतिकृति सीता देना, मतलब छाया छाया सीता, यानी कि उसकी इमेज, यानी कि उसकी प्रतिकृति, जीवंत ही ऐसे नहीं, लेकिन जो मेरी परमप्रिया मूल राधिका सखी है, रावण मूल सीता सीता देवी है, उसको आप अपने पास सुरक्षित रखो। तो अग्निदेव के हाथ में सीता को सुपुर्द करके प्रति सीता को लेकर आते हैं और फिर लक्ष्मण जी को कहते हैं कि इनको हम गुफा में सुरक्षित रखेंगे। आप गए होंगे, हम किसी को भक्तों को लेकर गए थे हॉस्पिटल के स्टाफ लोगों को, पंचवटी के पास सीता गुफा है। लक्ष्मण को कहते हैं आप इनको यहाँ पर रखना, इनकी रक्षा करना, मैं अभी राक्षसों को देखता हूँ। तो खरदूषण नाम के दो भाई हैं शूर्पणखा के, वो 14,000 सैनिकों के साथ में जंग स्थान की रक्षा करते हैं दंडकारण्य के, उनको जाकर गाली देती है, तो उन खरदूषण यहाँ भोग विलास में लिप्त हो, वो शरण नहीं आती है, तुम्हारी बहन की नाक और कान कट चुकी है, तुम यहाँ पर भोग विलास कर रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, भोग ले रहे हो, खाना खा रहे हो, औरतों के साथ में सो रहे हो, कैसे भाई हो तुम, निर्लज्ज हो। देखो वो वनवासी पुरुष मानव, एक तुच्छ मानव है, तो राक्षस लोग अपने आप को मानव से बहुत महान मानते हैं, मानव लोगों को अपना ब्रेकफास्ट लंच का साधन मानते हैं, ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो लंच में खाएंगे ऐसा सोचते हैं। तो देख मानव ने मेरा अपराध किया है। तो खरदूषण जो है 14,000 से ज्यादा कर पंचवटी को रहते हैं जहां पर पर्णकुटी बनी हुई है। अभी ये कथा राजा कुलशेखर बड़ी भावना से सुन रहे हैं, तो वो कथा सुन नहीं रहे हैं, हम लोग तो कथा सुन आराम से बैठे खड़े हो जाते हैं। सेनापति को आदेश देते हैं चलो सीधा चलो अभी के अभी चलो, आप देख दे रहे हैं लक्ष्मण जी सीता की सुरक्षा में पड़े हुए और अकेले रामचंद्र जी खड़े हैं धनुष बाण लेकर, उनके सहायता में कोई नहीं है, 14,000 सेना लेकर खरदूषण आ रहे हैं, उनकी सहायता करना जरूरी है। तभी वो कहां पर थे, तिरुवनंतपुर में थे, 1,000 किलोमीटर दूर है वो अयोध्या से, सॉरी पंचवटी नासिक से। तो क्या करें, उनकी जो साक्षात्कार उनको हो रहा है किसी और स्तर पे है, सेनापति तो उधर ही है तिरुवनंतपुर में, उनको पता है कथा चल रही है, ये तो लाखों साल मतलब ये तो कलयुग की कथा है, राजा कुलशेखर कलयुग की कथा में आते हैं, उसके पहले द्वापर युग हुआ था, उसके पहले त्रेता युग में कथा में लाखों साल पहले ये कथा हो चुकी है, उनको पता है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, हे राजा तुम पागल हो, आपको समझता नहीं क्या ये कलयुग है, ये सब स्टोरी चल रही है, इधर रामचंद्र है, कोई नहीं है। राजा ने कहा तो आदेश पालन करना पड़ेगा, उस जमाने की हम बात करें, कलयुग के अंदर भी जमाना था ऐसे, कोई पार्लियामेंट वोट और कोई पत्थर फेंक और माइक्रोफोन फेंक नहीं होता था वहां पर, वहां पर राजा बोलेगा तुरंत आज्ञा पालन, क्या करेंगे, उनको पता है कि राजा भाव में आ गए हैं। तो सफेदा निकले उनके लेकर और सोना लेकर राजा आवेश में दौड़ रहे हैं, तुरंत चलो पंचवटी में राम भगवान अकेले हैं, उनके सहायता करना हमारा फर्ज है। तो सेनापति क्या कर रहे हैं अभी कैसे करें, तो रस्ते में मीटिंग करते हैं, राजा दौड़ रहे हैं, कहते हैं काम करो कुछ 10-15 सैनिक जो है बहुत आगे चले जाओ, उत्तर दिशा में जाओ, राजा के आगे चले जाओ और कुछ देर बाद लौट के आओ, उनको बताना कि हम जाके आए पंचवटी, प्रभु रामचंद्र ने अकेले ही 14,000 सैनिकों को मार दिया है, अभी वहां जाने की जरूरत नहीं, उनका विजय हो गया है। तो कुछ सैनिक दौड़ दौड़ जाते हैं आगे, बहुत तेजी से जाते हैं, अभी दौड़ रहे पीछे से आदेश दे रहे भागो सब लोग जल्दी जाओ भगवान रामचंद्र अकेले हैं। तो कुछ लोग लौट के आते बोलते महाराज कुलशेखर जी अभी अभी हम पंचवटी जाके दर्शन करके आए, प्रभु रामचंद्र ने अकेले ने ही खरदूषण के साथ में 14,000 सैनिकों का वध कर दिया है, हमने अपनी आंखों से देखा है, उनके बाणों से कब धनुष निकल रहे, कब बाण वो लगाते थे, कब छोड़ते थे, कब उनको मारते थे, कब श्रावण लगाते थे, वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था, इतनी तेज गति से उनके धनुष से बाण निकलते थे, जैसे आकाश से वर्षा होती है ना वैसे अनंत बूंद जैसे गिरती है धारा की तरह, वैसे एक के बाद एक की वजह से अनंत वर्षा जैसे आकाश जो है वो अंधेरा जैसा हो गया था, इतने बाण छोड़ते थे राम भगवान। तो गौरव का वर्णन करते हैं कैसे वो गर्व से भरे हुए खर और दूषण को और 14,000 भयंकर राक्षसों को उन्होंने वध कर दिया। राजा बोलते अच्छा भगवान रामचंद्र विजयी हो गए, चलो लौट के चलेंगे राज्य में उत्सव मनाएंगे। वापस लौट के आते और तिरुवनंतपुरम में बड़ा उत्सव मनाते हैं, घर घर में सुगंधित जल चढ़ाते हैं, गुड़ी चढ़ाते हैं और रंग फेंकते हैं और सब लोगों को धन बांटते हैं, सुख मिठाई बांटते हैं, उत्सव मनाते हैं, नृत्य गायन सब कार्यक्रम होता है, वाद्य बजाते हैं, जय घोष करते हैं और प्रभु रामचंद्र का खरदूषण के ऊपर विजय उत्सव मनाते हैं। तो ये अनुभव के बाद में जो सेनापति होते हैं और राजगुरु होते हैं वो सोचते हैं ऐसा हर टाइम होगा तो कैसे चलेगा, अभी रामायण में तो कितना अभी कितना एक्शन है, उसके बाद में बहुत सारा युद्ध होगा एक्शन होगा, हमने देखा है रामायण ना कितनी उसके अंदर ऐसी घटना है जिसमें रोष उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है, वीरता उत्पन्न होती है और कितनी प्रकार की भावना है उसके अंदर। तो वो मीटिंग कर लेते हैं और तय करते हैं कि अभी इसके आगे जो कथा होगी वो एडिट करके होगी, मतलब कथाकार को पंडित को समझाएंगे, जब वो नए नए कथाकार आते रहेंगे ना उनको पंडित श्रीरंगम से आते रहेंगे उनको बताएंगे देखो ऐसा है ना एक्शन इमोशन की कथा जो है ना वो डिलीट कर देना, तो जो अच्छी अच्छी खुशी खुशी कथा है ना कि रामचंद्र जी है लक्ष्मण जी है वन में, लक्ष्मण जी आके फूल लेके आ रहे हैं, रामचंद्र जी जाके सब्जी लेके आ रहे हैं, सीता जी कंदमूल खा रही हैं बैठ के शाम को बातें कर रहे हैं वन में घूम रहे हैं, हनुमान जी कहते थे, हनुमान जी ने कहा है कि आपको सबसे खुशी का जो मौका हमारे लिए था वो आपका जो है वनवास का समय, कितना सुंदर समय था, आप संतों के समय बैठते थे सेवा करते थे, उनसे कथा सुनते थे, कभी कभी राक्षसों को मारते थे, पहले पहले मार लिया उन्होंने, वो जो थे ना मधु, क्या नाम था, ताड़का और सुबाहु, उनका वध करके राक्षसों को मारकर साधुओं को आनंद दिया। फिर तो 13 साल उन्होंने केवल साधुओं का संग किया, तो सबसे आनंदमय और आपका संग का जो आनंद हमको मिला देखने को वही था। ऐसे में समझता है तो उसी कथा को पढ़ना, तो वो पंडित बाद में फिर वो लोकल कथा हो गई, उसमें कहीं जाना आना नहीं हुआ, सैन्य को लेकर कहीं आक्रमण करना ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन वो जो ब्राह्मण था कथा करने वाला वैष्णव, उसको अर्जेंट काम निकला, तो उसने उसने पुत्र जो वो भी ट्रेन था, बहुत पंडित था, उसको कहा कि इसके आगे कथा आप करना, लेकिन जो एडिट करने की पॉलिसी थी वो उसको समझाया नहीं उसने। तो उसने फिर दोबारा रामायण पढ़ना शुरू किया एकदम श्लोक टू श्लोक, तो उसके अंदर कथा आई, वो कथा शुरू हुई मारीच के ऊपर, कि मारीच ऋषि को जाकर रावण जी मिलते हैं, तो मेरे बहन का इसने अपराध किया है, आपको मृग बनना पड़ेगा, सोने का मृग बनना पड़ेगा और सीता को मोहित करना पड़ेगा, और सीता को मोहित करने के पश्चात हम आएंगे ऋषि बनकर, और आप राम और लक्ष्मण को दूर भगा ले जाना, और दूर भगा ले जाकर जब राम का बाण आपको लगेगा, जरूर लगेगा, तब उसका मौत का वारंट उसके हाथ में दे रहे हो। तो मारीच एनीवे कहते हैं कि जब राम का बाण लगेगा तो मरते वक्त तुम राम राम करके पुकारना, नहीं लक्ष्मण लक्ष्मण करके पुकारना, हे लक्ष्मण बचाओ रक्षा करो मेरी। फिर लक्ष्मण भी आएंगे जंगल में, फिर सीता अकेले रह जाएगी, फिर हम ऋषि बनकर जाएंगे और उसका हरण करेंगे। तुम्हारे सोचते हैं कितना कितना क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज कावर्ड कॉल्ड, डरपोक, कितना डरपोक प्लान है इनका। इतना रावण सम्राट होने के बाद भी छल कपट से वो किसी की मानव की कन्या को भर लेना चाहता है, लेकिन रावण कहता है उसे कि हमारी जो हम आपको विनती कर रहे हैं, राजा जब विनती करता है तो वही उसकी आज्ञा होती है, ठीक तरह से उस आज्ञा का पालन करो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी सोचता है राजा के हाथ से मरने से पाप लगता है, क्यों ना प्रभु रामचंद्र के हाथ से मरे तो मुक्ति हो जाएगी, मरना तो है ही, अभी यहां भी मरना है वहां भी मरना है, दो ही रास्ते हैं, दोनों रास्ते मृत्यु निश्चित है, तो सोचते हैं कोई बात नहीं हम आपकी इच्छा पूरी कर लेंगे। तो मारीच जो है एक सुंदर ऐसा हिरण बन के आता है, इसके सोने की चमड़ी है, बहुत सुंदर सुंदर पीले रंग के निशान है उसके ऊपर, बहुत सुंदर सिंह है उसकी, हाँ कंचन मृग। तो सीता देवी के दर्शन में आता है, वहीं पर जाके विहार करने लगता है, तो सीता के देखो प्रभु कितना सुंदर हिरण है, इसको मेरे लिए लेके आओ, मैं उसको उन्मास के बाद में अयोध्या लेके जाऊंगी और सब सखियों के साथ में खेलूंगी उसके साथ। हमारे मराठी में हमने बचपन में सुना था ये अपना अपना प्रांत के अनुसार लोग कहानी और गीत और बनाते हैं, तो उसमें लिखा था कि सीता जी कहती हैं कि मैं उसका ब्लाउज बनाऊंगी, इसका जो चर्म है उसका सुंदर मैं पोल के बन भी ना नहीं अयोध्या में दिखा ले, अयोध्या राज्य में मैं इसका इतना सुंदर जो त्वचा है, जैसे कि मृग का होगा ना वो, ये योगी लोग उसको यूज करते हैं, इतना आकर्षक है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु के निर्माण में 84 लक्ष योनियां हैं, उसके अंदर ऐसा कोई भी जीव नहीं है, इसलिए ये जो है ये मायावी है, ये प्रभु के द्वारा बनाया गया जीव नहीं है, इसके मुंह में मत पड़ो आप, मैं कह रहा हूं ये मारीच है, राक्षस है जो हिरण बन के आया है, यहां पर छल कपट करने के लिए आया है। तो दुर्लक्ष कर दे दिए, और फिर प्रभु को कहते प्रभु आप मेरे लेके आइए, तो प्रभु उठते हैं जाते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं इसको इसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है, जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक मैं इसकी रक्षा करूं, और निश्चित ही इस तरह से वो हिरण भागता है, इस तरह से भागता है कि प्रभु रामचंद्र बहुत दूर चले जाते हैं जंगल में, उनको बहकाते हुए यहां से वहां भाग के जाता है, और आखिर में प्रभु रामचंद्र समझ जाते हैं, आपको लीला है उनकी, उनको तो पता ही है, बाण मारते हैं उसको, और जब उसके हृदय पर वो बाण लगता है तो जोर से चिल्लाता है हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। अभी प्रभु रामचंद्र जो है ना, लक्ष्मण को भरत को शत्रुघ्न को दशरथ पिताजी को माता को सबको पता है कि इसको कोई मार नहीं सकता है, अवध्य है, उनको शायद पता नहीं हुआ कि वो भगवान है, लेकिन उसकी वीरता पर विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि ने उनको जो आशीर्वाद और विद्या दिया है, पूरा विश्वास था कि प्रभु रामचंद्र कोई नहीं मार सकता है। फिर भी प्रसंग ऐसा बाका है, चीख सुनाई पड़ती है ऐसे कि जैसे कि राम कमजोर होकर बलहीन होकर जख्मी होकर पुकारते सहायता के लिए। सीता कहते जाओ तुरंत राम की रक्षा करो। तो कहते मैया आप चिंता ना करो, ये सब मारेज की माया है, ये वो मरते मुरते पुकार रहा है। तो मैंने कहा ना आप जाओ, जिस तरह से आवाज आ रही लगता है प्रभु राम संकट में है, मेरे प्रभु मेरे स्वामी का जीवन मेरा सौभाग्य संकट में है, और इस समय आप यहां पर क्या कर रहे हो, मैं कह रही हूं जाओ। तो कहते हैं प्रभु जी का मुझे आदेश है कि आपको छोड़ के जाना नहीं है। हां मैं जानती थी कि तुम्हें मेरे साथ अकेले रहकर मेरा संग करना था, मेरा भोग देना था, उसी समय का आप इंतजार कर रहे थे। अब बड़े खुश होंगे आपके प्रभु रामचंद्र का देहांत हो रहा है तो आप मेरा भोग कर सकते हैं, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तुम्हें मेरे शरीर को स्पर्श भी करने लूंगी। बोले माता आप ऐसे क्यों बोल रही है, मैंने आपके चरणों के ऊपर कभी नजर उठाई नहीं है आज तक, आप मेरे वंदनीय माता है, मेरे प्रभु की पत्नी है, मेरे लिए सब कुछ सर्वस्व आप है। लेकिन वो उस समय वो सुनने को तैयार नहीं, इसलिए फिर वो वंदन करते हैं और कहते हैं कि आपने ऐसे कठोर शब्द कहे हैं तुम्हें जाना ही होगा। वो दुविधा में पड़ जाते हैं, भाई की आज्ञा पालन करें कि भाभी की करें, लेकिन प्रसंग ऐसा आता है ऐसे लाखन लगा जाते हैं चले जाते हैं। और उतने में रावण जो है साधु का वेश पहनकर छल कपट करके सीता को लेके जाता है। और जब ये रामचंद्र को मिलते हैं, रामचंद्र जी उसका वध करके लौट के आ रहे हैं और यहां लक्ष्मण जी भाग भाग के आ रहे हैं, वो आराम चल के आ रहे हैं। जब लक्ष्मण को देखते तो वो खुद भाग जाते, लक्ष्मण तुम यहां कैसे आए, तुम क्यों आए, मैंने कहा था आपको नहीं छोड़ना आपको पंचवटी। तो सब वृत्तांत बताते हैं कि भाभी ने ऐसे ऐसे कहा, बोले अनर्थ हो गया अनर्थ हो गया। दोनों भाग के जाते पंचवटी की ओर, वो देखते हैं तो पंचवटी की पर्णकुटी में ना सीता है ना पीछे है ना आगे है ना जंगल में है ना फूल बेचने के लिए है नदी किनारे है, कहीं भी नहीं है वो। और फिर वो दर दर भटकते हैं जंगल में, लताओं को विलियों को पुष्पों को सबको पूछते हैं। और यहां पर रावण जो है सीता को हरण करके आकाश में उड़ाता है अपने विमान में, जो विमान उसने कुबेर से युद्ध करके छीन के लिया था, पुष्पक विमान जो मन की गति से और मन की इच्छा से चलता है, सुंदर जहाज में हवाई जहाज में उसको पकड़ के जबरदस्त डालकर आकाश में उड़ा के ले जाता है और वहां से जटायु आते हैं। जटायु की सुंदर कथा है, जटायु थोड़ी कथा का थोड़ा अवान्तर कर लेते हैं, आख्यान थोड़ा बदलते हैं। जब जटायु जवान था और दशरथ भी जवान थे, तभी एक बार शनि का युद्ध हुआ था दशरथ के साथ। शनि महाराज का ऐसा शक्ति है कि वो किसी भी राज्य में शनि काल आना ही है और अकाल दुष्काल पड़ना ही है, लेकिन दशरथ राजा जो है अपने भक्ति और अपने शुद्धि की वजह से शनि के प्रभाव को रोक के रखा था उन्होंने। शनि भी एकदम डिस्टर्ब हो गया कि ऐसे क्या बात है, नहीं मैं आक्रमण करूंगा दशरथ के राजा पर राज्य पर। तो जब शनि का आक्रमण होता है, दशरथ बड़े तेज के साथ में क्षात्र तेज के साथ में उसका सामना करने के लिए सामने आते हैं, भयंकर युद्ध होता है शनि और दशरथ के साथ में। तो एक बहुत धनुर युद्ध होता है, शनि एकदम टफ फाइट देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा अस्त्र चलाते हैं शनि महाराज कि दशरथ जो बेहोश होकर अपने रथ से आकाश में युद्ध हो रहा है तो रथ से गिर जाते हैं। आकाश से जब गिरते हैं तो जटायु और दशरथ की बड़ी मैत्री थी, जटायु दूर से युद्ध को देख रहे थे, देखते अचानक मेरे मित्र जो है वो अचानक रथ से गिर रहे हैं, तो अपने दोनों पंखों को ऐसे फैलाकर उसी से अधिक गति से नीचे जाकर वो गिरते हुए दशरथ को अपने पंखों पर पकड़ लेते हैं। देख रहे हैं आपने आकाश से दशरथ गिर रहे हैं, उससे तेज पंख फैलाकर उसके नीचे जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं गिरने वाले, और सुरक्षित जगह लेके जाते हैं, उनकी परिचर्या करते हैं और ठीक हो जाते हैं, होश में आते हैं। बेहोश दशरथ जो है होश में आते हैं, तब उसकी मित्रता और उसकी समय पर की हुई सहायता को देखकर दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं आपको वादा करता हूं, तभी उनको पुत्र उत्तर कुछ हुआ नहीं है, जस्ट अभी जवान राजा है, मेरा पहला पुत्र जो होगा वो मैं आपको भेज दूंगा, ऐसा कहते हैं। और दोबारा युद्ध में खड़े हो जाते हैं तो केवल वो युद्ध में दोबारा आए ये देखकर ही शनि महाराज प्रसन्न हो जाते, अरे ऐसा भी कोई योद्धा है, तो मैंने बेहोश करके व्रत से फेंक दिया उसको, फिर भी उसकी इतनी हिम्मत है कि वो मेरे सामने दोबारा खड़ा रहने का साहस कर सकता है, तो वहीं पर वो युद्ध समाप्त कर लेता है कि मैं प्रसन्न हो गया आपसे, वर मांगो जो चाहिए, मेरा एक ही इच्छा है कि मेरे राज्य में आपका प्रभाव नहीं होना चाहिए। बोले तथास्तु, अयोध्या पर कभी शनि का प्रभाव नहीं होगा। शनि महाराज बड़े खुशी खुशी लौट जाते हैं। यथावकाश आप जानते हैं कौशल्या जी और कैकेयी और सुमित्रा गर्भवती रहती है, प्रभु रामचंद्र का जन्म होता है, लक्ष्मण का जन्म होता है, भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है। जन्म होते ही ये भयंकर साइज का जो पक्षी है वल्चर है, मतलब वो ऐसा कोई तोता कोयल नहीं है, वो जटायु यानी गिद्ध, गिद्ध गिदड़, उसको अशुभ माना गया, कभी गिदड़ पवित्र समय पर कभी आते नहीं, आना भी नहीं चाहिए। तो रामचंद्र के जन्म होते ही ये बहुत पर्वत समान आकाश में छाया हुआ जो भयंकर पक्षी है वो अयोध्या के किनारे में आके बैठ जाता है सीमा पर। तो सब लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे इतना पवित्र समय है, हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, एक नहीं चार पुत्र की प्राप्ति हुई है, और गिदड़ कैसे आ गया। और राजा भी क्या है, किसी को ना बताते हुए बाल रामचंद्र को लेकर राज्य के बाहर जा रहे हैं। पत्नी समस्या में आ गई, चिंता कर रही, क्या हो रहा है, किसी को बता नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, और इतने सुंदर दिल के टुकड़े को, प्रथम बालक को लेकर जा रहे हैं, सीधे हाथ से लेकर बैठकर रथ में जाते हैं, सीमा के बाहर जाकर इसको उस गीत को सुपुर्द कर देते हैं। सब प्रजा देख रही है क्या हो रहा है, ये भी कैसे हो सकता है। तो फिर जटायु जी कहते हैं कि मैं तो गीत हूं, मैं तो मनुष्य नहीं हूं, मनुष्य के बालक को कैसे पालन करना है मैं इसे जानता नहीं हूं, तो आप इस मेरे बालक को अपने पास ही रखना, अजीब शूरवीर बन जाएगा तब मैं इसको ले लूंगा। तो राजा भी बड़े प्रेम से इसको दोबारा लौट के लेके जाते हैं, और अपनी पत्नियों को और सेनापतियों को और मंत्रियों को सब कहानी सुनाते हैं कि एक से पास रह सकता था, तो सब लोग बच गए, उनको लगा था कि गिदड़ तो खा जाएगा हमारे बालक। फिर यथावकाश आप जानते हैं उनको वनवास होता है, तो वनवास में जब पहुंचते हैं, पहली बार जब निकलते हैं वहां से, तो जब अगस्त्य मुनि के आश्रम में आते हैं उनसे गाइडेंस लेने के लिए भगवान रामचंद्र कि कैसे वनवास करना है, उसके नियम क्या होते हैं, क्या क्या करना है, कैसे कैसे रहना है, तो अगस्त्य मुनि के पास रामचंद्र और लक्ष्मण बैठकर लंबी कथा सुनते हैं उनकी उपदेश पूर्वक। तो अगस्त्य मुनि के आश्रम में जटायु जी वहां पहुंचते हैं, वो वहां पर एक ताकेत नाम का स्थान है, वहां से कुछ 22 किलोमीटर आगे अगस्त्य मुनि का आश्रम है, जहां पर प्रभु रामचंद्र सीता देवी लक्ष्मण की मुलाकात अगस्त्य मुनि से हुई थी, वहां पर जटायु जी पहुंचते हैं। और वहां से जब ये निकलते हैं तीनों, तो बोलते हैं उनको कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया जगह जो है वो पंचवटी है, वहां पर गोदावरी के किनारे आप पत्तों की पर्णकुटी बनाना और वहां पर निवास करना, आपके वनवास के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो अगस्त्य मुनि के आश्रम से पंचवटी तक ये लोग पैदल चलते हैं, तो जटायु कहते हैं हम आपको अपने कंधे पर ले सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, वनवास में ऐसा कोई साधन ले सकते नहीं, हम तो पैदल ही चलना है, नंगे पैर चलना है। तो कोई बात नहीं, दंडकारण्य में बहुत सारे राक्षस है, यहाँ पर सब जगह राक्षस का प्रादुर्भाव है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो पंख हैं वो फैलाकर आपके ऊपर चलेंगे, जैसे यहाँ पर होता ना हेलीकॉप्टर एस्कॉर्ट, वैसे वो पंख फैलाकर प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण और सीता के ऊपर चलते चलते उनको पंचवटी तक छोड़ के आते और कहते हैं कि हम आपकी निगरानी में देखभाल करते रहेंगे। और जब रावण सीता को हरण करके लेके जाता है आकाश में, तब ये किसी पेड़ पर बैठे होते हैं और सीता की पुकार सुनते हैं, वो पुकार रहे ना, हे मेघों, हे देवताओं, हे वन के देवताओं, हे वृक्षों, आप मेरे प्रभु जी को बताना कि मुझे रावण हर ले गया है, आप सब लोग यहां, हे वन के देवताओं, हे आकाश के देवताओं, हे पेड़ों पौधों, सब पुकार दे। तो पुकार सुनकर जो बड़े बूढ़े हो गए, वो 60,000 साल की उम्र हो गई उनकी, सतर्क हो जाते और तुरंत उड़ के हवा में आते, देखते तो पुष्पक विमान में बैठकर बड़ी आकाश की ऊंचाई में रावण सीता को हर के ले जा रहा है, वो पहचानते हैं उनको, कुछ साल पहले उनको छोड़ के गए थे ना वो वहां पर अगस्त्य मुनि के आश्रम से। तो वो देखती है कि जटायु जी उड़कर आ रहे हैं, वो तात तात करके पुकारते, क्योंकि वो बहुत ससुर के मित्र है ना, वो ससुर की तरह ही राम जी के पिताजी की तरह है। तो वो कहती है कि तात जाकर प्रभु जी से कहना कि हमें रावण हर ले गया है, इससे आप युद्ध नहीं करना, ये जवान और बलशाली है, आपका शरीर बहुत वृद्ध हो चुका है, इसको आप झेल नहीं पाएंगे, इसलिए युद्ध मत करना, आपने जान की बाजी मत लगाना, जाकर मेरे प्रभु रामचंद्र जी को बताना कि मुझे कैसे किस दिशा में ले गया है। जटायु जी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरे जीते जी मैं हार मानकर पीठ दिखाकर कैसे यहां से जाऊं, ये भयंकर राक्षस तुम्हारा हरण करके लेके जा रहा है, तो मैं जब तक जिंदा हूं तब तक पीठ दिखाकर जा नहीं सकता, जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये नहीं हो सकता। इसलिए वो रावण को लड़कारता है युद्ध में, बहुत भयंकर युद्ध होता है आकाश में। रावण जो है पहले सोचता है कि यार पंछी है क्या, बूढ़ा क्या करेगा, बोला जाओ पेड़ में बैठ जाओ, हमारे बीच में बताओ, तो हमारे शक्ति को नहीं जानते हैं, जोर से उसका उपहास करते हैं। रावण कहते, रावण को जटायु कहते हैं कि मैं बूढ़ा हूं तो क्या हुआ, अभी तक मेरे बाजुओं का पंखों का बल खत्म नहीं हुआ है, तुम जैसे पापियों को मैं 2 सेकंड के अंदर मार सकता हूं, ऐसे वीरता की बातें होती हैं। फिर रावण को वो अपने पंख से ऐसा फटकारता है कि रावण जो है वो विमान में यहां से वहां हो जाता है, इतना जोर से प्रहार करता है, अपने नाखूनों से उसकी पीठ खरोचता है, उसका खून निकाल लेता है, उसको रथ में 4-5 बार घेरा देता है, उसके धनुष को तोड़ के फेंक देता है, उसके बाण को फेंक देता है। तब रावण को बहुत गुस्सा आता है, तब वो अपना चंद्रहास खड़ग निकालता है, बड़ी गर्जना करते हुए उसके 2 पैर काट देता है, उसके पंख भी काट देता है। तब फिर जख्मी अवस्था में बहुत खून बहता है और बेहोशी अवस्था में वो नीचे गिर जाता है, और फिर रावण हवा की गति से सीता जी को लेकर चला जाता है, लंका में पहुंच जाता है। और यहां पर सीता को ढूंढते ढूंढते सब आ रहे हैं और कथा चल रही है आगे, राजा कुंज की कथा सुन रहे हैं। और फिर जब ये देखते हैं कि जटायु का वध हो गया है और सीता का हरण हो चुका है और प्रभु हमारे अकेले दोनों जंगल में ढूंढ रहे हैं सीता को, तो इसको आवश आता है, प्रभु जामन संकट में है, उनकी प्रिय सीता का हरण हो चुका है, हम लोग यहां बैठ के क्या कर रहे हैं, हमको सीधा लगकर तुरंत आक्रमण करना चाहिए लंका पर, अभी के अभी लंका चलना है। कहते महाराज जी लंका में जाने की जरूरत नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन किया जाए। सब सेना निकलती है और सब सेना भागती है। राजा बोल रहे हैं प्रभु रामचंद्र जो है अकेले जंगल में भटक रहे हैं, सीता जी को लंका में रावण लेके आए, अभी के अभी आक्रमण करना है। सब लोग रामेश्वर पहुंच जाते हैं, वहां से वो पास नहीं था तिरुवनंतपुर से, उतना दूर नहीं था जितनी पंचवटी थी। कुछ ही समय के बाद में रामेश्वर के समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, सब सेना जो है वहां किनारे में रुक जाती है और ये घोड़े में बैठकर समुद्र में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोचते हैं कि अभी सेतु बंधन होगा, हम सेतु बांधेंगे और जाएंगे, उसके लिए तो इतना आवश्यक है कि उसको तत्काल पहुंचना है, तो घोड़े में लेकर वो समुद्र में प्रवेश करते हैं। सब लोग देख रहे हैं कि राजा हमारे मर रहे हैं, तो करेंगे क्या, इसका आवश्यक इतना है, दुखी होते हैं, परेशान हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। लेकिन राजा आगे आगे जा रहे हैं और डूबते हुए जा रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं रावण सावधान मैं आ रहा हूं। तो उतने में उनके भाव को देखकर प्रभु रामचंद्र समुद्र के बीच में अवतार लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं मैंने रामायण का युद्ध समाप्त करके अभी मैं रावण को मार कर आ रहा हूं, मैंने सभी रावण के योद्धाओं को मार दिया है, मैंने कुंभकर्ण को मार दिया है, मैंने इंद्रजीत को मार दिया है और दशानंद महापराक्रमी रावण का वध करके मैंने सीता को मुक्त कर दिया है। और उतने में वो प्रभु रामचंद्र जो है अपने साथ में सीता देवी और लक्ष्मण को प्रकट करा दिए और कहे देखो आपको यकीन नहीं हो रहा है, मेरे साथ सीता मैया सीता देवी भी हैं, मेरे भाई लक्ष्मण भी हैं, इन सब लोग लक्ष्मण के सहायता से मैंने पूरे राक्षस का वध करके लंका पर विभीषण को समान राजा बनाकर रखा हुआ है, आप चिंता मत करो अपने सिद्धि पे चले जाओ। और जैसे मैं भवसागर में डूबते हुए मैंने भक्तों को भवसागर को उठाकर वैकुंठ ले जाता हूं अपने वाहन से, अपने गरुड़ वाहन पर बैठाकर, वैसे मैं आज आपको यहां से उठाकर अपने राज्य में जाओ भेज देता हूं, लेके जाता हूं और वहां पर आप मेरे विजय का उत्सव मना। तो झट से प्रभु रामचंद्र उनको उस सागर में डूबते हुए उठाते हैं और हवाई जहाज से हवाई मार्ग से सीधे तिरुवनंतपुरम में पहुंचा देते हैं। और तिरुवनंतपुरम में आते ही रामचंद्र जो है अदृश्य हो जाते हैं और रामचंद्र जी के विजय में दशहरे के उपलक्ष्य में पूरे तिरुवनंतपुरम में ना दशहरे का उत्सव का समय है कुछ नहीं है, लेकिन दशहरे का उत्सव मनाते हैं कि प्रभु रामचंद्र जो है विजयी होकर लौट गए। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि एक जो सप्लीमेंट क्या कहते हैं उसको बदली कामगार आया था वहां पर, हाँ जो पंडित था जिसको पूरा गाइडेंस था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो उसका बालक वहां पर बैठा उसको पता नहीं था क्या नहीं पढ़ना है, वही पढ़ा उसने, इसलिए इतनी लंबी लीला हुई। फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको डर लग रहा था इसकी इस घटना के बाद। ये तो पहले तो घटना तो ठीक थी, उन्होंने कैसे मैनेज कर लिया, सैनिकों को आगे भेज दिया, और ये घटना में तो ऐसा हुआ। अभी आगे केवल रामायण नहीं, और भी कथा सुनने वाले हैं, अगर महाभारत सुनेंगे तो कैसा होगा वनवास में जाएंगे सीधा द्रौपदी और सुनेंगे कथा तो कैसे होगा। तो कहते कैसे भी करके ना, इनकी जो वैष्णवों के संतों के ऊपर जो श्रद्धा है उसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि तो बड़ा भाव है इनका इनके ऊपर, और यही लोग आते हैं श्रीरंगम से और उनको कथा सुनाते हैं, उनका भाव आवेश होकर फिर वो कुछ कुछ घटनाएं होती रहती है। कितनी कितना टेंशन है उनके लिए। हाँ, अगर आपके घर का कोई बालक ऐसे भावना में आ जाए और बोलेगा मैं अभी आकाश में टेरेस पे जाकर बोलेगा मैं हवा में उड़ के जाऊंगा, लंका में जाकर रावण का वध करूंगा, तो आपको चिंता होगी कि नहीं होगी? वो कूदेगा और गिर जाएगा, मर जाएगा तो कैसे होगा? तो भाव में है, ये तो राजा है, सबका प्रिय है, प्रेम से सोचते हैं वैसे। राजा का जीवन खतरे में है, और सबकी जड़ जो है उनकी जो श्रद्धा वैष्णव के ऊपर है, जो श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करते हैं, उनके मुख से सुनते हैं, तभी उनको आवेश आता है। तो हमको क्या करना चाहिए? उनकी श्रद्धा को कभी काट देना चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र की मूर्ति थी उनके पास जिनकी वो सेवा करते थे, और अधिकतर सेवा जो है वो संत लोग करते थे जो आते थे। तो एक दिन सब मंत्रीगण मिलकर क्या करते हैं, उस मूर्ति के ऊपर जो स्वर्ण का रत्नों का हार है वो निकाल लेते हैं और बात फैलाते हैं कि अलंकार चोरी हो गया है प्रभु रामचंद्र का। और सबको पता है कि इसमें एंट्री केवल पुरोहितों को है, तो श्रीरंगम से आते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, उनके पास केवल इसका चाबी है, तो खुद ही उसको लंपास कर देते हैं। और ऐसी बात सब जगह फैला देते हैं राज्य में कि राजा के जो प्रमुख विग्रह हैं प्रभु रामचंद्र के, उसका महत्वपूर्ण अलंकार जो है वो चोरी हो गया। तो बात राजा तक आती है, राजा पूरा सुनते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मंत्रीगण सुनाते हैं उनको। राजा जो है एकदम शांति से पूरा विवरण सुनता है और पूरी कथा सुनता है। मंत्री लोग बोलते हैं कि इसके गर्भगृह के अंदर, मंदिर के अंदर केवल इन पुजारियों को एंट्री है, उसके अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जो इसमें दीक्षित है ब्राह्मण, आम ब्राह्मण नहीं, जो इस सेवा में दीक्षित है वही यहां प्रवेश करते हैं, बाकी सब किसी को यहां एंट्री नहीं है, तो इनके अलावा कोई चोरी नहीं कर सकता है। ये सब वो ध्यान सुनता है, और सब कुछ सुनना होने के बाद कहता है कि मुझे इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है, और अगर ये वैष्णव चोर है तो जाओ सबसे भयंकर विषैला कोबरा सांप लेके आओ, नाग लेके आओ, विषैला एकदम, और उसके मटके के अंदर जहां पर आप उसको लेके आओगे मैं अपना हाथ डालूंगा, और अगर ये वैष्णव पापी है, चोर है, तो वो सांप मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा, और अगर वो वैष्णव प्रामाणिक है, उसने ऐसा नहीं किया है, तो वो सांप मुझे नहीं काटेगा। परीक्षा भी करते हैं अपने ऊपर करते हैं, हाँ, उनको बुला कर नहीं पड़ते कि उनको लेके आओ और सांप के अंदर उसका हाथ लगो, ऐसा नहीं कहते। कितनी श्रद्धा है वैष्णव के ऊपर, कितना आदर है मन के अंदर, इतना पूरा षड्यंत्र रचाया गया है राजा को बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि वो भी कपटी थे, ऐसा नहीं, राजा को बचाने के लिए। राजा सुन रहा है पूरा विवरण उसका, पूरा बता रहा है, दिख रहा है कि ये वैष्णवी चोर हो सकते, लेकिन उनका हृदय नहीं कह रहा है, हृदय नहीं मान रहा है। और कसौटी भी करनी है तो खुद को दांव पे लगाता है। तो फिर राजा के आदेश के अनुसार वो भयंकर कोबरा को लेके आते हैं, उसके अंदर राजा हाथ डालता है, भगवान का नाम लेता है। कई घंटे बीतते हैं, राजा अपना हाथ बाहर निकालता है, कुछ नहीं। तो फिर इतनी श्रद्धा का प्रदर्शन देखकर सब मंत्रीगण हैरान हो जाते हैं और सत्य राजा को बोल देते हैं कि हमने ये सब षड्यंत्र किया था, लेकिन आपकी श्रद्धा देकर हमका हमारा हृदय पिघल गया है, हमने अच्छी बात सोचकर षड्यंत्र किया था, लेकिन आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास और आपका प्रेम उनके चरणों के प्रति, वैष्णव के प्रति इतना इतना श्रेष्ठ है कि हमने सोचा कि ये हमको छुपाना नहीं चाहिए आपसे। तो वो सब सत्य बोल लेते हैं कि आपके जिंदगी की वजह से हम लोग डर रहे हैं कि आप भाव आवेश में आते हो, पानी में कूदते हो, कभी किधर चल जाते हो, आपका शरीर को, आपके जीवन को हानि हो सकती है, इसलिए आपको बचाने के लिए हमने षड्यंत्र किया। ये सब सुनने के बाद राजा जो है बड़ा विरक्त हो जाता है, वो सोचता है कि मैं जराए जाऊंगा ऐसे, अभी मैं नहीं रहूंगा यहां। फिर वो अपने पुत्र को राजपथ पर बिठाकर श्रीरंगम चला जाता है, अपने विग्रह को लेकर चला जाता है। और वहां पर अनेक साल भिक्षुक की तरह रहता है, मतलब एकदम गरीब जैसे भिक्षुक शकर के अंदर करता है, संतों के संग में रहता है और संतों के संग में प्रभु रामचंद्र के विग्रह की सेवा करता है। और वहां पर आगे जाकर एक जगह है जिसका नाम है अनंत पद्मनाभ मंदिर, वो भी साउथ इंडिया में केरला श्रीरंगम के आगे है। वहां पर उसने बैठकर एक भजन संग्रह लिखा है जिसका नाम है मुकुंदमाला स्तोत्र, राजा कुरुक्षेत्र ने। उसका जो लिखने का काम जो है ये वानप्रस्थ लेने के पश्चात विरक्त होकर राजपाट का सौंदर्य धन दौलत अधिकार सब छोड़कर विरक्त होकर संत बनकर जब वो संतों के संग में पहुंचता है, वहां उस अनंत पद्मनाभ के मंदिर में बैठकर उसने अपने हृदय की भावनाओं को काव्य रूप में प्रकट किया है। उसका एक सबसे फेमस और महत्वपूर्ण श्लोक है, उसके अंदर इतना सुंदर श्लोक है, वो ये है कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरातम अद्वैत विशतु मे मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कपवात पितौ कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। राजा कहते हैं, अभी वो राजा नहीं है, वो कहते हैं कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंचरांत अद्वैत विषय तुम्हें मानस राज हंस। हे भगवान, जब तक मेरा भी शरीर स्वस्थ है, उसमें कोई व्याधि नहीं है, कोई रोग नहीं, कोई दर्द नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, आजू बाजू सब कुछ शांति है, भोजन प्राप्त हो रहा है, सब कुछ सही है, मन शांत में अवस्था में है, बुद्धि सही जगह पर है, आपके भक्तों के संग में मैं हूं, इसी समय हे भगवान मेरे मन का जो राजहंस है, मतलब मन को वो राजहंस कह रहे हैं, मन राजहंस वो है जो भगवान के चरणों में है, नहीं तो वो गीदड़ है, वो मन जो भगवान के सेवा में नहीं है, वो मन जो भगवत चेतना में नहीं है, जो भगवत सेवा में नहीं है, वो मन जो है एक हिंस पक्षी की तरह है जो हमारा विध्वंस कर देता है। इसलिए वो साहस कर रहे हैं बोलने का कि मेरा मन राजहंस की तरह है। राजहंस वो है जो अगर उसको दूध और पानी ला के देंगे तो उसमें पानी छोड़ देगा और दूध पी के चला जाएगा। मतलब इस जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ दिव्य वस्तु है केवल उसी को ग्रहण करेगा वो, बाकी जो गलत वस्तुएं हैं गलत चीजें हैं उसको त्याग देगा, कितना भी मोह करेंगे उस सामने उसको तो वो मोहित नहीं होगा, वो मन राजहंस बने। हाँ, तो ये मन जो राजहंस की तरह है वो अभी ही आपके चरणों में लगना चाहिए, ऐसे वो विनती कर रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं आगे प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ। क्या होगा, प्राण जब निकलने का समय आएगा तब उस समय शरीर स्वस्थ नहीं होगा, दर्द से बेहाल हो जाएगा, अनंत प्रकार का दर्द होगा उसके अंदर, तो 40,000 विषैले सांप अगर किसी को एक साथ काट लेंगे तो कितना भयंकर वेदना होगी उसको, क्या होश रहेगा उस आदमी को उस समय, साथ साथ में कफ वात पित्त तीन दोष जो है वो कंठ में आकर रुक जाएंगे और कंठावरोधन विधौ, कंठ में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, मतलब गला चौकप हो जाएगा, सांस नहीं ले पाऊंगा उस समय, स्मरणम कुतस्ते कैसे मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा, इसलिए अभी जब सब कुछ अच्छा है तभी मुझे ले लो आपके चरणों में, ऐसा श्लोक उन्होंने लिखा है। इतना सुंदर भावना है उसके अंदर। क्या मैसेज हमारे लिए मैसेज है, राजा कुलशेखर का जीवन जो है वो कोई भगवान की लीला उसके लिए कथा नहीं थी, वास्तव था, इस पर रियलिटी। जब जब उन्होंने कहानी सुनी भगवान की तो उस कहानी का अनुभव किया उन्होंने, उन पात्रों का, उन भगवान का और लक्ष्मण का राम का सब कथाओं के प्रसंगों का उन्होंने अनुभव किया पूरी तरह से, आत्मा से मन से बुद्धि से अस्तित्व से इंद्रियों से उसी का आनंद लिया उन्होंने और समरस हो गए, वो एक रूप हो गए उससे, कलयुग से लेकर त्रेतायुग में जाके मिल गए वो प्रभु रामचंद्र के चरणों में भक्ति भावना से। और ऐसा ही नहीं केवल सुन रहे कथा और समरस हो रहे, उस कथा का जो प्रसंग है उसके अनुरूप कार्य भी कर रहे हैं, रथ लेके निकल जा रहे हैं युद्ध के लिए, प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए निकल रहे हैं, केवल कथा के साथ समरस होकर उसका आनंद नहीं ले रहे, कथा के अनुसार कथा में जो भगवान है हमारे उसके प्रसंग के अनुसार उनकी सेवा करने के लिए भाग रहे हैं, कैसा भाव है। और वो कुलशेखर जिनके लिए भगवान की कथा वास्तव था वो क्या कह रहे हैं, जब तक जीवन में शक्ति है बुद्धि और मन शांत है तब तक भगवान को अपने आप को अर्पण कर लेना चाहिए, आगे समय किसने देखा है? हुएज इन टुमारो, कल क्या होगा किसने देखा है? नहीं नहीं अभी हम थोड़ा परिवार का कर्तव्य पूरा करेंगे और कल भगवान का भजन करेंगे, 10 साल के बाद वीआरएस लेंगे तब करेंगे, जब बच्चे शादी शादी होकर सेटल हो जाएंगे तब करेंगे, जब थोड़ा धन की पूंजी वो कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा तब करेंगे। ये तब कभी होता ही नहीं, और तब जब समय आएगा, तब का समय जब आएगा तब जोड़ों में दर्द होगा, हार्ट में ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, डायबिटीज होगा और लकवा मारेगा, तब क्या भजन करेंगे भगवान का। मेरे पिताजी ने यही कहते थे, जिन्होंने हमको भगवान का भक्त बनने से विरोध किया था, लेकिन जब 80 साल के हुए, 74 साल के हुए, मेरे घर पे बीमार होकर आए थे, तो तभी उन्होंने कहा बेटा तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, सही समय पर कर रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं इतना गरीब हूं, जब सब बच्चों को सेटल करूंगा तब निश्चिंत होकर अंतिम समय पर बहुत भजन करूंगा, लेकिन आज मेरी अवस्था इतनी भयंकर है, मैं फुल टाइम फ्री हूं लेकिन इतना दर्द और इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा है कि मैं 1 मिनट के लिए भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगा सकता। जब भी सोचता हूं उनके बारे में तो छाती में और जोड़ों में मेरा मन चला जाता है जहां पर दर्द है। मैंने कहा था, मैंने तुमको पहले विरोध किया, लेकिन मैं आपको छाती पर हाथ रखकर बोलता हूं कि अभी तुम सब सही हो, तुम्हारा इंद्रिय सही है, शरीर सही है, उत्साह है, मन है, बुद्धि सही जगह पर है, भगवान का भजन करो। वही कुलशेखर जी कह रहे हैं अपने मुकुंद माला स्तोत्र में, बहुत सुंदर भजन संग्रह है, अपने हृदय की उत्कट भावनाओं को उन्होंने प्रकट किया है, और उनका उधर ही श्रीरंगम में शरीर छूटता है और भगवत धाम चले जाते हैं। उनका तिरुकोष्ठीयूर में उनका स्थान भी है जहां पर उनका स्मृति चिन्ह बनाया गया है, स्मारक बनाया गया है। ऐसे सुंदर भक्त थे। तब ने सोचा रामायण बताने का भी प्रसंग है, रामनवमी पास में आ रही है, तो क्यों ना ऐसे अनोखे भक्त का वर्णन किया जाए, साथ साथ रामायण की कथा भी हो जाएगी और भक्त का सुंदर भाव जो है वो भी आपको सुनने को मिलेगा। हाँ, राजा कुलशेखर महाराज की, प्रभु रामचंद्र की, सीता देवी की, लक्ष्मण हनुमान की जय, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।